भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। तीर्थ यात्रा में पालन करने योग्य नियम, मौके पर स्वल्प दान का भी असीम फल होने की कथा है। बद्रिकाश्रम या कहीं भी कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, या ऋषिकेश हरिद्वार है ये भी तीर्थ यात्रा के लिए ही आए हैं। तीर्थ यात्रा दो प्रकार की होती है, एक जगह तीर्थों में रहकर भजन ध्यान करना और एक तीर्थों में घूमना, दोनों की आवश्यकता है। अब कोई हमसे पूछे कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, हमें तो ये लगता है एक जगह रहकर भजन ध्यान करना। यदि किसी को घूमने का ठीक लगता हो तो वो जाने। कई लोग ऐसे घुमक्कड़ हैं कि जो हर साल बद्रिकाश्रम जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते, और उनमें वो बहुत बढ़िया मान लेते हैं कि हमने खूब अच्छा सत्संग कर लिया। घूमने फिरने में भजन ध्यान कम होता है। अब खास बात बोलते हैं, 3 साल पहले हमने भी तीर्थ यात्रा की थी, वह एक ही बात रही, रात दिन यही रहता, चलो 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 यही रहता। फिर भी उसकी आवश्यकता है, तीर्थों में घूमना भी ठीक ही है, परंतु तुलना करके आपको बताया कि जगह जगह घूमने की अपेक्षा एक तीर्थ में बैठकर भजन ध्यान करो। तीर्थ में 2-3 दिन रहना ठीक है, समय तो उसमें लगता है, किंतु तीर्थों में रहने का ज्यादा महत्व माना गया है, कम से कम 3 रात रहना चाहिए। जो भाई बद्रिकाश्रम जाते हैं उनमें एक तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहां 3 चीजें मिल सकती हैं, धर्म, काम और मोक्ष। काम नीची चीज है। गंगा जी से ये मांगना कि हे गंगा मैया हमको धन दे दो, हमको बेटा दे दो, हमको पोता दे दो, ये नीची कामना है। जब मांगने पर ही उतारू हो गए हैं और बद्रीनारायण भगवान से मांगने के लिए आप तैयार हैं, गंगा जी से मांगने तो ऊंची चीज मांगो, क्योंकि देने वाला कोई दरिद्री थोड़ा ही है। उनके पास जाकर तो परमात्मा की प्राप्ति मांगो। कहां चिरमटी कहां पारस। कोई कोई बड़े आदमी के पास जाए, वह खुश हो तो कहे लड़का दे दो। भगवान के पास गए और मांगा लड़का, उस आदमी से भी आपने यही मांगा और भगवान से भी यही मांगा, बराबर समझ लिया। यहां आकर तो धर्म का पालन करो, भगवान का दर्शन मांगो। इसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? मुख से तो भगवान का नाम जप करें और मन से उनके चरणों का ध्यान करें। कई लोग नाम का जप करते हैं पर मन से संसार का चिंतन करते हैं और कहते हैं ये तो अपने आप होता है। अपने आप भी क्यों होता है? आपने भगवान में मन लगाया नहीं। तो भगवान में मन नहीं लगाया, इसी कारण से तो आपका मन संसार में जाता है कि नहीं, हम लगाते तो हैं लेकिन वापस संसार में चला जाता है, तो वापस भगवान में लाओ। जैसे हरदम संसार का चिंतन करने से ये मन संसार में गया, ऐसे बार बार भगवान के अंदर लगाने से फिर ये भगवान में लगेगा। यदि कोई कहे कि भगवान का ध्यान करते जावे, हम कोई रास्ता नहीं देखे, कहीं खड्डे में गिर गए और कहीं मर गए, तो यदि ऐसा हो जाए तो निहाल हो जाओगे। भगवान का ध्यान करते करते कहीं गिर पड़े मर गए तो निहाल हो जाओगे। अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से मरने से तो कल्याण होगा। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान ये दो प्रधान बातें हैं। रास्ते में चलो तो कीर्तन करते हुए चलो। देखो उस समय पैदल चलते थे ना, उनकी बात है। बीच में तोड़ दे फिर बोलो जय बद्रीनारायण की। कहीं जाकर हम ठहरे तो वहां इस बात का ध्यान रखो कि टट्टी पेशाब आदि रस्ते पर नहीं करें, दूर जाकर करें। गंगा जी से कम से कम 100 पैंडा दूर जाकर करें। तीर्थों में जाओ, वहां कोई संत महात्मा उनका दर्शन करो। प्रधान चीज है स्नान करना, देवता और महात्माओं के दर्शन करना। कोई भाई जा रहे हैं उनके पास, कोई चीज की कमी हो तो अपनी शक्ति हो तो उसको देना, सेवा करना। अपने पास शक्ति नहीं है तो भी एक रोटी दान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है, जितना लाख रुपए दान करने का भी नहीं है। एक राजा तीर्थ यात्रा के लिए चला, काफिले के साथ में गरीब आदमी भी था। वह दो धोती, कुछ खाने का आटा सामान साथ में लेकर निकला था। इस प्रकार से जा रहा था अपनी मस्ती में वो गरीब आदमी। सुबह देखा सर्दी पड़ रही है और एक आदमी ठिठुर रहा है, कांप रहा है। उसने एक धोती उसको दे दी। वो पाकर बड़ा खुश हुआ, उसने आशीर्वाद दिया। उस समय जेठ आषाढ़ का महीना था, दोपहर में बड़ी कड़ी धूप पड़ती थी। उन लोगों के चलने के समय बादलों की छाया रहती थी। सब लोग कहने लगे हमारे राजा साहब बड़े धर्मात्मा हैं, देखो इनके प्रताप से हमारा मार्ग बादलों से आच्छादित हो गया, गर्मी नहीं लग रही है। उसी झुंड में एक आदमी ने कहा कि भाई क्या पता राजा का प्रताप है कि क्या और किसी का भी प्रताप है, इतना बड़ा झुंड है जाने किसका प्रताप हो, राजा का ही प्रताप कैसे कहा। ये बात राजा ने सुन ली। राजा ने कहा इस आदमी को हमारे पास भेजो। पास बुलाया और उसको धन्यवाद दिया, तुम्हारी बात ठीक है, न मालूम किसका प्रताप है भाई, मैं तुम्हारी बात से खुश हुआ हूं। एक एक आदमी चलो, अब एक एक आदमी चलो, देखें बादल किसके साथ चलता है। अब एक एक आदमी रवाना हुआ, बादल वही ठहर गया। राजा भी चले तो भी बादल ठहर गया, धूप में गया राजा। वो कहने वाला था वो भी गया तो धूप में गया, बादल ठहर गए। सब चले गए, अब बेचारा वो गरीब आदमी वो भी चला। वो जब चलने लगा जिसने एक धोती दान में दी थी, वो इतनी देर तक तो सो रहा था, उसने देखा कि अरे मेरे साथ के आदमी आगे निकल गए, मैं सोया पड़ा हूं, जगा। तो जब तक वो सोया था बादल वहीं पर उसके ऊपर छाया कर रहा था, और जब वो उठकर हड़बड़ाहट में चलने लगा कि अरे मेरे झुंड के आदमी आगे निकल गए, तो वो जल्दी जल्दी चला तो उसके चलने के साथ बादल भी चले। इधर वो लोग देख रहे थे, फिर उनको निश्चय हो गया कि बादल इस कारण से आए हैं। उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? अपना नाम बता दिया। क्या करते हो? कुछ नहीं करता, मामूली आदमी हूं। तो आपने कोई तीर्थ में दान किया है? उसने कहा, मुझे तो रोटी मुश्किल से मिलती है, मैं क्या दान करने लायक हूं? आप लोगों का सहारा लेकर आ गया, इतना बड़ा झुंड जा रहा है, राजा साहब जा रहे। मैंने कहा, कभी कोई कमी होगी तो पूर्ति हो जाएगी राजा से। मेरे पास क्या चीज है जो मैं दान पुण्य करूं? न मैं शरीर से सेवा करी, न मैंने कोई दान पुण्य किया। पूछा, तुम घर से क्या सामान लाए थे? घर में मेरे पास है ही क्या, एक धोती पहनने की, एक धोती और लाया, दो धोती, और क्या लाए? बस 8-10 सेर आटा, उसकी पोटली बांध दी, कमर में लटका लेता हूं। अब धोती कहां है? तुम्हारे पास दो धोती थी, दूसरी धोती कहां है? दूसरी धोती? कई देर तक, हाँ दूसरी धोती, एक आदमी तकलीफ पा रहा था, उसको मैंने दे दी। साथ में एक महात्मा भी चल रहे थे। महात्मा ने कहा, सुनो राजन, ये एक धोती के दान की महिमा है। राजा ने हंसकर कहा महात्मा जी से, महाराज कोई न्याय भी है? मैं तो लाखों रुपए का दान करता हूं, साल साल में लाखों रुपए का, एक धोती दान में कर दी जिसमें आप हमको बता रहे हो, कोई न्याय है? लाखों रुपए का दान करने वाले के साथ तो बादल चला नहीं, और एक धोती वाले के साथ बादल चला। महात्मा ने कहा, जो है वो बड़ा न्याय हो रहा है, उसके सामने तुम कभी न्याय अन्याय की बात कर ही नहीं सकते। इस आदमी के पास है क्या जो इसने एक धोती दान में दिए? एक धोती इसके पास है कितना? तुम्हारे पास कितना है? क्या इसके समान तुम कष्ट पा सकते हो? इसलिए असल में पुण्य धर्म का लाभ रुपयों के गैल नहीं होता। एक रुपए से जो फायदा मिल सकता है वो लाख रुपए से भी नहीं मिलता। मौके पर देखो, जो अभावग्रस्त है उसको देने में अधिक फल होता है। एक सेठ ने लाखों रुपए यज्ञ दान भजन में लगा दिए, अब रुपए समाप्त हो गए। उसकी स्त्री ने कहा, सेठानी ने, अपने पास तो सब रुपए समाप्त हो गए। यहां एक नगर सेठ रहता है, उसे यज्ञ दान आदि बिक्री कर दो और फिर रुपया लाकर खर्च चलाओ। तो वो सेठ नगर सेठ के पास गया। स्त्री ने आधा सेर आटा साथ में बांध दिया, उस नगर से जाओ ना, आधा सेर आटा ले जाओ, खा लेना। वे एक तालाब के किनारे ठहर गए, ये सेठ। वहां नहा धो करके चार रोटी बनाई, भोजन की तैयारी की। इतने में एक कुतिया वन में से आई, वो ब्याई हुई थी, उसके बच्चे 3 रोज से भूखे थे। कुतिया पास में आई, ऊ करते पूंछ हिलाने लगी। उन्होंने एक एक रोटी को तोड़ तोड़ करके उसके सामने रख दिया। उसने एक रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, कुतिया के प्राण बच गए। कुतिया के प्राण बचने से उसके बच्चों के भी प्राण बच गए। वो भूखा ही गया नगर सेठ के पास, कहा कि मुझे यज्ञ दान भजन तप ये बेचना है, खरीदोगे? नगर सेठ ने कहा आज जो तुमने यज्ञ किया है वो मैं खरीद सकता हूं, आज के पहले कोई यज्ञ दान तब किया होगा, मैं नहीं खरीदूंगा। उस सेठ ने कहा आज तो मैंने कोई यज्ञ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अब कोई धन पैसा है ही नहीं, मैंने कोई यज्ञ किया ही नहीं, और यज्ञ करने की ताकत होती तो मैं आपके पास मांगने क्यों आता। नगर सेठ ने कहा कि आज प्रातःकाल तुमने एक कुतिया को चार रोटी डाली थी कि नहीं। उस सेठ ने कहा वो डाली तो थी, आपने कैसे जाना। तो नगर सेठ ने कहा मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान है, उससे मैंने पूछा एक आदमी यज्ञ बेचने आया है, कौन सा यज्ञ उससे खरीदूं। तो उसने कहा कि आज जो उसने चार रोटियां एक कुतिया को दी है वो यज्ञ खरीद लीजिए। पूरी कथा सुना दी। यहां ये बात दिखलाई कि मौके की चार रोटी थी उसकी जितनी महिमा है उतनी उसने जीवन में जो यज्ञ दान तप किया उसकी महिमा नहीं है। मैं फिर प्रकरण पर आ जाता हूं। कह रहा था रास्ते में चले तो जप ध्यान कीर्तन करते करते चले, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, देवता महात्माओं का दर्शन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, चटोरापन नहीं करना चाहिए, दो समय भोजन करें, दो या तीन चीज खाएं ज्यादा नहीं। सेठ जी कहते थे रोटी खाओ दाल खाओ या साग, तीन ये हो गए, और यदि कोई चावल ले तो चावल ले हो, दाल ले हो, रोटी ले हो, चौथी चीज मत ले हो, कोई भी चीज तीन चीज ले हो। वाणी का संयम रखो, मौन रखो, बोलना हो तो सत्य और प्रिय बोलो, स्वाध्याय करो, भगवान का नाम जप करो। मौन रहने से भजन ज्यादा होता है, साधन भी तेज होता है। तीर्थों में जाओ तो किसी की निंदा करोगे तो बड़ा पाप लगेगा। तीर्थों में आकर यदि बड़ा उत्तम काम न हो सके तो कोई बात नहीं, कम से कम पाप तो मत करो। जिस प्रकार यहाँ पुण्य कर्मों का फल अनंत होता है उसी प्रकार पाप कर्मों का भी फल अनंत होता है। यहाँ ध्यान भी खूब लगता है, ये महात्म्य प्रत्यक्ष है, बड़ी पवित्र भूमि है। गंगा को रोज प्रणाम, स्नान, पापों का नाश होता है। गंगा के किनारे गंदगी फैलाओगे पाप लगेगा। धोती भी निचाओ तो दूर जाकर निचोनी चाहिए, और भी कोई तरह का पाप नहीं करे, किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचाए। यहाँ जो पाप किए जाते हैं वो वज्रलेप होते हैं, इसलिए यहाँ कोई तरह का पाप नहीं करे, शरीर से भी कोई पाप न करे, तिरस्कार न करे, शरीर का तप करो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव माने देवता, द्विज माने ब्राह्मण, गुरु माने गुरु, प्राज्ञ माने ज्ञानी जन। गुरु का अर्थ है माता पिता, गुरु आचार्य, अपने से बड़े, परिवार में बड़े, पद में बड़े, आयु में बड़े, गुणों में बड़े, उनको प्रणाम करना वो गुरु है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। बड़ों को पूजन करना, बड़ों को नमस्कार प्रणाम करना, सरलता का व्यवहार रखना, ये तप है। दूसरी स्त्री को देखे ही नहीं, दिख जाए तो उसके चरणों में दृष्टि डालो। स्त्री को पुरुष दिख जाए तो भाई बेटा या पिता के समान समझो। गोस्वामी जी की ये बात याद रखो, उत्तम के अस बस मन माही, सपने वान पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हिंसा की तो बात ही नहीं करनी, और दूसरे का अन्न ग्रहण करके दूसरे का अन्न ग्रहण के दाने के समान समझो कि ग्रहण को कौन खावे। रास्ते में जा रहे है, कोई फल लगा हुआ है, लेना ही नहीं है दूसरों की चीज को। दूसरे के हक पर अपना अधिकार मत जमाओ। अपना जो साथी है उनका साथ मत छोड़ो। कोई बीमार हो जाए तो उसके साथ यदि वापिस आना पड़े तो वापिस आना अच्छा है। कई लोग सोचते हैं हम तो अब दर्शन करके ही जाएंगे, बीमार पड़ा है तो पड़ा है, ऐसा मत करो। वो बीमार हो गया वापिस यदि लौटता है तो लौट आओ, आपको तीर्थ का फल मिलेगा। बल्कि तीर्थ जाकर दर्शन करते उसकी अपेक्षा ज्यादा लाभ मिलेगा। युधिष्ठिर की कथा जानते ही हो ना, उन्होंने कुत्ते के साथ, उन्होंने कुत्ते का साथ भी नहीं छोड़ा। हमारा साथी बीमार हो जाए उसको छोड़कर जाने का मन ही क्यों। रास्ते में पानी लग जाता है गर्म करके पिया जाए तो अच्छा है, भूख से कम खाओ। जहां चट्टियों में ज्यादा आदमी रहते हैं वहां दूसरे आदमियों को आराम करने दें। यहां तो धर्म पालन के लिए आना हुआ है, आराम के लिए थोड़े ही हुआ है। अपने पास रास्ते में बरसात आ गई, अपने पास दो कपड़े हैं, एक दूसरे को दे दिया, उसका निर्वाह हो गया। रास्ते में सबकी सेवा करो। तीर्थों में सेवा का महात्म्य बड़ा है। और एक मिनट भी फालतू समय नहीं बिताना चाहिए। शरीर से हरदम काम लें, या तो दूसरों की सेवा करें या स्वाध्याय करें। तीर्थों में इन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी पर क्रोध मत करो, कहीं पर भी स्वार्थ सिद्धि की तरफ ध्यान मत दो। स्वार्थ से ही ज्यादा पाप होते हैं। दूसरों की सेवा और दूसरों की बड़ाई करो, इससे इससे सब आदमी अपने अधीन हो जाते हैं। यह मोहिनी मंत्र है। ऐसा व्यवहार भगवान के साथ किया जाए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। दूसरों के अवगुणों की तरफ ख्याल न करके उसके गुणों की तरफ ध्यान करो। दूसरे की प्रशंसा की बात हमने इसलिए बताई है कि लोग निंदा करते हैं, निंदा से महान पाप इकट्ठा होता है। दूसरों की बड़ाई करोगे तो निंदा करने का स्वभाव खत्म हो जाएगा। संसार के भोग पदार्थों का तो दूर से ही त्याग करो। संग्रह का त्याग करके ही तीर्थ में विचार किया जाए। पांच यज्ञ बताते हैं। एक माला तो गायत्री की जपनी चाहिए। दस माला हम जपें तो हमारे भारी से भारी पापों का नाश हो सकता है। स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप सब कर सकते हैं। पांच महायज्ञ क्या है? एक तो ऋषि यज्ञ है, संध्या गायत्री करना और वेदाध्ययन करना, इससे ऋषि लोग प्रसन्न होते हैं। ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, हमारे हित के लिए उन्होंने शास्त्र रचा है। एक देव यज्ञ, नित्य प्रति अग्नि में हवन करना। एक अतिथि यज्ञ, अपने घर पर आए अतिथि आ जाए तो भोजन कराओ। एक पितृ यज्ञ, तर्पण आदि करें। एक भूत यज्ञ, जीव मात्र को भोजन देना। मनुष्य का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, यावन मात्र जीव की सेवा के लिए मनुष्य का शरीर बनाया है। इसकी बनावट ही देख लो, पैरों से कितना जल्दी चल सकता है, हाथों में कितनी अंगुलियां, कितनी वस्तुओं को ग्रहण कर सकता है, तो ये सेवा के लिए है। परहित बस जिनके मन माही, तिनक जग दुर्लभ कछु नाही। अपने शरीर के ढांचे को देखो, ये शरीर किसके लिए बनाया है? सबकी सेवा के लिए बनाया है। कुत्ते गधे सबकी सेवा थोड़ी कर सकते हैं, मनुष्य सबकी सेवा कर सकता है। स्वार्थी लोग दूसरी बात समझते हैं, वे कहते सारे जानवर हमारे लिए हैं। हम पूछते हैं क्या तुम्हारे लिए जानवर है तो तुम राक्षस हो क्या? ये तो राक्षसों का धर्म है दूसरों को खाना, मनुष्य का धर्म है दूसरे को आराम पहुंचाना, सेवा पहुंचाना। बाघ है, भालू है, इनके दांत देखो, नाखून देखो, तो पता चलेगा कि ये मांसाहारी है। किंतु अपने दांत देखो तो मालूम होता है कि हमारा आहार मांस नहीं है, फल या अन्न हमारा आहार है। उनके दांत यूं है, यूं आते निकालना, अपने ये दांत, अपने दांत सीधे साधे है। इस चद्दर को देखें तो इससे पता चलता है कि किस काम की है। ये ओढ़ने की है, बिछाई भी जा सकती है, त्वचा इंद्रियों को सुख पहुंचाने में ये काम आ सकती है। चद्दर ये खाने का पदार्थ थोड़ा ही है, चद्दर सूंघने का थोड़ा ही है, ये सुनने का थोड़ा ही है। हम गधे को देखते हैं तो ज्ञान होता है कि वह बोझा ढोने वाली चीज है। ये वेद थोड़ा ही पड़ेगा। मनुष्य का शरीर देखने से पता चलता है ये सबकी सेवा के लिए है। हम सबकी सेवा करें, सबको भोजन कराएं, सबको जल देवे। सूर्य नारायण को जल दिया जाता है, सूर्य भगवान उसे ग्रहण करके सारे संसार को देते हैं। पूज्य मदन मोहन जी शास्त्री ने बताया था कि जो तीन चल्लू जल सूर्य को देता है वह ब्रह्मपुरी कर रहा है। इतना महात्म्य है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी माने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराना। सवेरे सूर्योदय के समय जल लेकर, तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को एक, फिर परिक्रमा करें, फिर दो, फिर वहीं परिक्रमा करके तीन। वैसे तो 12 होती है, कम से कम बताया। तीन चल्लू जल सूर्य को देता है, वो ब्रह्मपुरी कर रहा है। हम तर्पण करते हैं, पहले देवता ऋषि आदि का तर्पण करके पितरों का तर्पण करते हैं, चराचर जीवों का तर्पण करते हैं, सबको जल दे दिया। एक सूर्य भगवान को जल देने से सबको जल दे दिया। अब सूर्य को क्या तो हम दे सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति, अपने मन में देने का भाव आया कि सूर्य को अर्पित करें, बस अपना काम हो गया। हम भोजन करते हैं, यदि यावन मात्र प्राणियों को भोजन कराकर भोजन करें तो वो अमृत के समान है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुचन्ते सर्व किल विषय। इसीलिए बलि वैश्वदेव बताया गया है। बलि वैश्वदेव से जो किया जाता है उसे सारे संसार को अन्न पहुंचता है। आपका खर्चा कितना गया? आपके रसोई में से केवल रोज की 2 रोटी 2 फुलका। 2 फुलकों का समय लगता है 3 मिनट, बल्कि बलि वैश्वदेव में 5 महायज्ञ संक्षेप में आ जाते हैं। इस वास्ते नित्य प्रति हम जो नित्य कर्म करते हैं वह तथा बलि वैश्वदेव ये नित्य प्रति करना चाहिए। करना तो चाहिए 5 महायज्ञ। यदि 5 नहीं कर सके तो 4 नहीं तो 3 नहीं तो 2 तो जरूर करो। अतिथि को जरूर भोजन कराओ। आपको कथा सुनाई थी ना, राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ किया। एक नेवड़ा आया, उसने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कोई काम का नहीं, ब्राह्मण ने भोजन कराया, मैं सोने का हो गया, इससे कुछ नहीं हुआ। घर पर कोई अतिथि आ जाए, उसे भोजन करा के बचा हुआ अपने खावे तो वो यज्ञ शिष्ट है। सेठ जी की बात सुनी, सेठ जी को दूध अनुकूल पड़ता था। मेहमान आ गए देरी से, दूध उनको देना था तो मेहमानों को दूध दिया नहीं, सेठ जी को ले जाके दूध दिया घर वालों ने। सेठ जी ने कहा कि उनको दूध दिया कि नहीं, कि दूध तो था नहीं, कि ये क्या है, ये क्या है, मेरे लिए कैसे लाए, उनको दे के आओ, खुद ने नहीं लिया, मेहमानों को दिया। जो हमारे पास खाने पीने की वस्तु है उस पर अतिथि का अधिकार है, ये समझ के भोजन कराओ। प्रतिदिन गीता जी के एक अध्याय का पाठ, हरे राम 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 हरे कृष्ण, जितनी माला फेर सके, सबसे ऊंचा साधन बताया है। यज्ञोपवीत हो तो संध्योपासना करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, नारायण 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 श्रीमन नारायण